તારીખ 8/6/1996 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 204.
અનુભવ પ્રકાશ 18મું પાનું થાય છે. હિન્દી મેં દેખ લેના કોણ સા પેજ 14 પેજ 16 પેજ. मेरा ऐसा स्वरूप है, गुणग्राम सुखधाम रूप अभिराम रूप, यही मेरा स्वरूप है. ऐसा स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान चारित्र में अवलंबन लेना, वही भाव मोक्ष को और उपाय उपाय को साधता है. वही भाव मोक्ष को साधता है. मोक्ष है वो उपेय है, उपाय से प्राप्त करने योग्य भाव को उपेय कहते हैं. और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वरूप का इस प्रकार से स्वीकार आया वह उपाय भाव है. उपाय कहो, मार्ग कहो, इलाज कहो, एक ही बात है. और उपेय है वो मोक्ष है. गुण का ग्राम, ग्राम मैंने सिटी शहर, आत्मा गुण का ग्राम है, गुण भंडार है, गुण समुद्र है, ऐसी उपमा दी जाती है. जहाँ समूहवाचक नाम दिया है, गुण का समूह है. और शुद्ध आत्मा को आराधन करता है, शुद्ध आत्मा का आराधन करता है. इस रीति से ही निर्ग्रंथ पुरुष शिव पथ को बहुत साध करके, समाधि को प्राप्त करके परम पद को पहुँचते हैं. इसी रीति से, यही एकमात्र रीति है. रीति कहो, विधि कहो, या कार्य पद्धति कहो, एक ही बात है. निग्रंथ पुरुष कौन, किसको कहते हैं, कि जिसको बाह्याभ्यंतर कोई ग्रंथि नहीं, अभ्यंतर में मोह की ग्रंथि नहीं, यानी मोह के परिणाम से, मोह के परिणाम कहीं भी चिपकते नहीं, और बाहर में किसी भी प्रकार का पदार्थ का के साथ संबंध नहीं, उसको कहते हैं निर्ग्रंथ. जैसे मुनिराज को निर्ग्रंथ कहते हैं, तो उनको कोई परिग्रह तो है ही नहीं, इसलिए कोई बाह्य पदार्थ से कोई पकड़ नहीं कि मुझे ये होना, इसके बिना नहीं चलेगा, वो बात नहीं है. और अंदर में किसी पदार्थ के प्रति मोह नहीं, इसलिए बाह्य और अंतर में ग्रंथ मैंने पकड़, गांठ होती है ना, वो पकड़ होती है, वो किसी भी प्रकार की नहीं है. इसको कहते हैं कि निर्ग्रंथ. मुनिराज, शिव पथ मैंने आत्मकल्याण के मार्ग को बहुत साध साध करके, समाधि को प्राप्त करके, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके परम पद को पहुँचते हैं, यानी मोक्ष में पहुँचते हैं. अपना चेतन प्रकाश मोह विकार को प्राप्त करके मलिन हुआ है. अपना चैतन्य का प्रकाश वही मलिन हुआ है। कैसे? मोह के कारण से मलिन हुआ है। दर्शन मोह है, वो मलिन करता है ज्ञान को और दर्शन को। भेद ज्ञान जड़ चेतन को भिन्न करे। जो भेद ज्ञान है वो जड़ और चेतन का एकत्व हो रहा है, परिणाम में उसको भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं भेद ज्ञान से। उसे अंतर्मा धारण करके, धरी धरी बार बार धारण करके, उसे अंतर में बार बार धारण करके, निज ज्ञान का अभ्यास बार बार करके, सार अविकार अपना अखंड रूप को जान करके, उसे अंतर में अनुभव में ला करके, महामोह हट का नाश करके, जो स्वरूप रस अपने स्वभाव में है, यह स्वभाव को निज उपयोग में योग्य स्थान रूप करे, यथास्थान रूप करे, स्थिर करे। किस प्रकार से साधना करता है वो बात कहते हैं कि भेद ज्ञान से जड़ चेतन को भिन्न करे, बार बार भेद ज्ञान को अंतर में धारण करके, निज ज्ञान का अभ्यास बार बार करे। निज ज्ञान मैंने क्या? ज्ञान ज्ञान का संवेदन करे, वो निज ज्ञान का अभ्यास है। बार बार स्वसंवेदन करे, उसी को ही ज्ञानाभ्यास कहते हैं, उसी को ही निज ज्ञान का अभ्यास कहते हैं। ये निश्चय ज्ञानाभ्यास है। और ऐसी बात जिन ग्रंथों में लिखी हो उस ग्रंथ का पठन पाठन करे, उसको व्यवहार ज्ञानाभ्यास कहते हैं। वो भी व्यवहार ज्ञानाभ्यास कब कहा जाता है? कि ग्रंथ के अनुसार अंतर में निश्चय ज्ञानाभ्यास होवे, तो अंतर में ज्ञान का अभ्यास नहीं करे और ऐसा करने वाले ग्रंथ को बार बार पठन करके रटन करे क्या करे, वो ज्ञानाभ्यास नहीं है। जैसे कि हम एक कृपालु देव का वचन है, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। तो आत्म भावना को भाने से केवल ज्ञान होएगा। वो अपने जो 833 नंबर का पत्र शुरू किया है कल से, उसमें आखिर में आत्म भावना आएगी। ऐसी भावना भाने से केवल ज्ञान हो सकता है, सम्यक दर्शन से लेकर के। हाँ, तो केवल ज्ञानी, यहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात है कि जो सम्यक दृष्टि है वो आत्मभावना भाने से विशेष रूप से स्वरूप स्थिरता में आएगा, तो मुनि दशा की प्राप्ति होगी। और मुनि दशा में आत्मभावना चालू रहेगी तो केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। इस तरह से भावना चालू रखना हर गुण स्थान में। अब हम भावना तो करें नहीं, पर वही पद को रटन किया करें, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, उसको बोलते ही रहे बोलते ही रहे, वो आत्म भावना नहीं है। और इस प्रकार से केवल ज्ञान होने वाला भी नहीं है। केवल ज्ञान का सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता ऐसे रटन करने से। इस तरह से यहाँ भी हम जिस ग्रंथों में स्वसंवेदन ज्ञान करने का कहा है, बताया है, उसको पढ़ते रहें और अंतर में स्वसंवेदन ज्ञान करने का प्रयास नहीं करें, तो वो सही ज्ञानाभ्यास नहीं हुआ। ऐसे शास्त्र अभ्यास को ज्ञानाभ्यास नहीं कहते, लेकिन ज्ञान ज्ञान का वेदन करे ऐसा ज्ञानाभ्यास के साथ साथ वैसे ही कहने वाला शास्त्र का पठन करना, वो व्यवहार ज्ञानाभ्यास में जाता है। निज ज्ञान का अभ्यास बार बार करके सार अविकार अपना अखंड स्वरूप को जान करके, सार मैंने सुखरूप, अविकार मैंने विकार बिना का शुद्ध, सार अविकार अपना अखंड स्वरूप को जान करके, ऐसे अपने स्वरूप को भावना में लेकर के कि मैं ऐसा सुख निधान हूँ और परमोत्कृष्ट शुद्ध हूँ, सर्वोत्कृष्ट शुद्ध हूँ, ऐसा जान करके उसे अंतर में अनुभव में ला करके, ऐसा जान करके अनुभव में ला करके महामोह हट का नाश करके, जो महामोह कौन है, दर्शन मोह है, वो महामोह है। मोह दो प्रकार के, दर्शन मोह और चारित्र मोह। उसमें दर्शन मोह है वो महामोह है, और मोक्ष मार्ग में वो पहले मरता है। चारित्र मोह महामोह नहीं है फिर भी पीछे मरता है, ऐसी बात। हट इसलिए, हटता नहीं है इसलिए। दर्शन मोह को हटाना वो अनंत काल से नहीं हुआ है। चारित्र मोह को कई बार मंद किया है आसानी से, दर्शन मोह को मंद नहीं किया, हटाया नहीं, मजबूत है, हटने में मजबूत है वो। इसलिए महामोहट को नाश करके जो स्वरूप रस अपने स्वभाव में है, उस स्वभाव को निज उपयोग में योग्य स्थान करे। जो स्वरूप रस मैंने आत्मरस, आत्मरस मैंने चैतन्य रस, चैतन्य रस माने अमृत रस, कैसा आत्मा का अमृत रस है, वो अपने स्वभाव में है, ऐसे स्वभाव को जो अनंत अमृत रस से भरा हुआ है, ऐसे अपने स्वभाव को, ये जो शरीर प्रमाण क्षेत्र है ना, उसके प्रदेश प्रदेश में अनंत अनंत अमृत रस आत्मा का भरा है, वर्तमान में मौजूद है, ऐसा रस वर्तमान में मौजूद है एकदम। इसकी हूफानी चाहिए कि है मेरे में, अभी है, मैं ऐसा शांत अमृत रस से, शांत सुधा रस से भरा हुआ हूं वर्तमान में ही, उसको उपयोग में योग्य स्थान रूप करे, सावधानी से उसमें अपनत्व करे। अपना स्वरूप है इसलिए अपने स्वरूप को सावधानी से ग्रहण करके उसमें अपनत्व करे। इसको कहते हैं कि योग्य स्थान में किया। योग्य क्यों किया, कि अपना था और अपना स्वीकार कर लिया। सावधानी आनी चाहिए, बिना सावधानी वाला कोई जीव नहीं। या तो जीव स्वरूप को छोड़ करके राग और जड़ पदार्थ की सावधानी करेगा, या तो स्वरूप की सावधानी करेगा। बिना सावधानी वाला कोई जीव नहीं है। ये जो सावधानी है वो मोह से संबंध रखती है। जिसका मोह होता है उसकी सावधानी होगी, मां जागृति रहेगी। इसलिए कहते हैं कि उपयोग में मैंने सावधानी से योग्य स्थान रूप करे, मैंने अपने तो कर ले। स्वभाव में अपनत्व करे, सिर्फ सादी बात तो उतनी ही है कि स्वभाव में अपनत्व करे। वो स्वभाव का विशेषण लिया कि जो स्वरूप में अपने स्वभाव में है, वैसे स्वभाव को, यही स्वभाव को, यही स्वभाव में अपनत्व करे। स्वरूप की उपयोग शक्ति कर्ममां गुप्त हो गई तो क्या शक्ति का अभाव माने कि नहीं मानना चाहिए? शक्ति का मिसयूज हुआ है लेकिन शक्ति का अभाव नहीं हुआ। देखिए, अनंत काल से चारों गति का दुख हमारे आत्मा भोग रहा है। कितना दुख भोगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है उतना दुख भोगा है। उतना दुख सहन करने की शक्ति थी तब तो भोगा, कुछ हुआ तो नहीं। अनंत दुख भोगने के बाद हम वर्तमान में वैसे के वैसे मौजूद है कि नहीं है? तो अनंत दुख भोगने की जो शक्ति है उस सामर्थ्य को पहचानो तो अनंत सुख का भोक्ता हो गए। अनंत सुख का भोक्ता होवेंगे। शक्ति तो शक्ति है, इसलिए कहते हैं कि स्वरूप की उपयोग शक्ति कर्म में गुप्त हुई है। मैंने कर्म के उदय में सावधान हो गया, प्रकृति का उदय आया उसमें जुड़ गया, स्वरूप की सावधानी नहीं रही। स्वरूप में बेसावधान रहा और उदय में सावधान हो गया तो शक्ति का खर्च वहां हो गया, अपना स्वरूप की शक्ति का खर्च वहां हो गया। तो ऐसा हुआ तो क्या शक्ति का अभाव माने क्या? नहीं, शक्ति का दुरुपयोग हुआ है जरूर, शक्ति का दुरुपयोग हुआ है लेकिन शक्ति का अभाव नहीं हुआ है। और हो सकता भी नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं, होने का संभव भी नहीं, क्योंकि शक्ति ऐसी ताकत वाली है कि उसका अभाव हो ही नहीं सकता। उसके पर दृष्टांत दिया है, जैसे किसी का पुत्र घर में है, किसी का पुत्र घर में खेलता है, बाजार में वो आदमी है जिसको कोई पूछता है उसका पुत्र तो घर में है। बाजार में किसी ने पूछा कि आपको पुत्र है, तो कहा हाँ मैंने, साथ में नहीं है इसलिए नहीं है ऐसी बात तो नहीं है, मेरा पुत्र भी है और वो पुत्र की विद्यमानता भी है। एक आदमी का अपना पिताजी मर गया था, बहुत शौक लगा, उतना शौक लगता था कि इनको फोटो को देखे तो बेसुध हो जाए। 40 साल का लड़का है, 40-45 साल का लड़का हो, पिता के प्रति उतना लगाव था कि वो मर जाने से इनका जो फोटो घर में लगाया था उनको देखते ही बेसुध हो जाए, फेंट हो जाए। उतनी असर आ जाए, तो उस पर पर्दा लगा दिया। क्या किया, फोटो उतारा नहीं, फोटो पे पर्दा लगा दिया। फिर उसके घर जाना हुआ, उन्होंने बात किया कि कुछ समय पहले मेरे पिताजी चले गए और मेरी हालत ऐसी हो गई है, क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। फोटो देखकर दुख होता था, वो दुख चाहता नहीं था। जिस लगाव के कारण के दुख होता था वो चाहता नहीं था। दुख कौन चाहेगा। मैंने कहा आपका एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे पिताजी नहीं हैं, पहले थे अब नहीं है, तो जब थे तब आप 24 घंटा क्या साथ में रहते थे, अलग होते ही नहीं थे क्या। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था, तो फिर कैसे रहते थे। तो हम तो महीना 15 दिन में एक दफे ही मिलते थे। मैं अहमदाबाद का बिजनेस संभालता हूँ और मेरे पिताजी बम्बई का, बम्बई में इसकी मिले थी ये सर्वोदय हॉस्पिटल वाले कांति भाई। इनका लड़का है गौतम भाई, इनका पुत्र है गौतम भाई। तो अहमदाबाद हम गए थे पर्यूषण में, उसके बंगले पे ले गए, शाही बेड में इसमें बड़ा बंगला है। तो मैं इजिप्शियन कॉटन का इंपोर्ट करके अहमदाबाद की बम्बई की मिलों में बेचता हूँ। मेरा बिजनेस है बड़ा, तो मैं इधर ही रहता हूँ और पिताजी वहाँ मिल चलाते हैं, बम्बई की मिलें चलाते हैं। तो हम 15 दिन महीने में बम्बई जाया करते थे और वहाँ भी सारे दिन साथ में नहीं रहते थे, खाना खाने के लिए टेबल पर साथ में बैठते थे। देखिए, दूर रहने से कोई लगाव नहीं रहता है वो बात नहीं है, तीव्र लगाव था उन्हें। तो उसके घर पे फोटो दिखाई कि देखो ये पर्दा लगाया है, वो हटाने से मैं बेशुद्ध हो जाता हूँ। इनका आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि मेरे पिताजी नहीं हैं, पहले साथ में नहीं थे तो भी थे, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट था। मुंबई में थे और आज स्वर्ग में है। देखो, आपके पिताजी ने बहुत धर्म बुद्धि से बहुत काम किया है, सरोदय हॉस्पिटल में सारे धर्म की मूर्तियाँ ये सब स्थान बनाए हैं, तो दान भी बहुत दिया होगा, स्वर्ग में चले गए होंगे। हम तो नहीं जानते, लेकिन उसको तो ऐसा ही बोलना पड़े, इसका जो परिणाम है ऐसी गति होती है। लेकिन उसको दूसरी बात तो अच्छी नहीं लगे ना, बोले कि स्वर्ग में होंगे। अब आपका लड़का अमेरिका में पढ़ता है तो आपको दुख क्यों नहीं होता, क्यों, कि वहां है, शिकागो में है, तो स्वर्ग में है ऐसा ले लो ना। रमत तो कितनी है और नहीं है उतनी की रमत है, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा कोई खेल नहीं है इसमें। वो जादूगर क्या करता है उसको नहीं है बताता है, नहीं है उसको है मैं बताता है, आपको आश्चर्य होता है। वो तो पोजीशन को ट्रांसफर करता है और कुछ बात नहीं है, पर्याय से पर्याय अंतर करता है। तो देखो, जिसमें बर्तन में कुछ नहीं था, देखो ये कबूतर आ गया, नहीं था उसमें है बताया और है उसमें खाली बता दिया। लेकिन है नहीं है में रिएक्शन बहुत बड़ा आता है, तो उसको बहुत बड़ा रिएक्शन आता था। हम बोले कि आपके पिताजी है और इधर जो आप लोगों की संपत्ति है इसे ज्यादा संपत्ति में है, देवलोक में तो इसे बहुत संपत्ति होती है, तो वहां अधिक सुखी होंगे। आप तो संपत्ति में सुख मानते हो, हमारी बात छोड़ो, तो वहां ज्यादा सुख है ऐसा स्वीकार कर लो ना। फिर आपको दुख नहीं होगा। जितना दुख होता है उतना दुख नहीं, दुख उतना होगा कि हम मिल नहीं सकते, होने पर भी उनको मिल नहीं सकते, वहाँ हमारी पहुँच नहीं है, इसके इसलिए जा करके मिले, उतनी सी बात है, लेकिन नहीं है सो बात नहीं है। नहीं है का बहुत रिएक्शन आता है, जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उसका मुर्दा लेटा हुआ रहता है ना, आदमी जैसा ऐसा ही रहता है। अब वो जिंदा है वो भी लेटा रहता है और मुर्दा भी लेटा रहता है, लेकिन जब पता चलता है कि अंदर में आत्मा नहीं है तो वो लेटा हुआ शरीर में, शरीर को देख करके, वही शरीर को देख करके कितना दुख होगा, क्यों नहीं है वो मालूम पड़ गया है, बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। ऐसे आत्मा है वो सम्यक्त्व का विषय है, और मिथ्यात्व का विषय है आत्मा नहीं है, मैं हूं और मैं नहीं हूं, हूं पने से आस्तिक के भाव होता है, कोई सम्यक्त्व है, लेकिन कहां यथास्थान में जहां है वहां, शरीर में मैं हूं तो आत्मा का अभाव माना, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है उसमें अपनत्व किया तो आत्मा का सद्भाव माना। है नहीं है कि रमत है संसार और मोक्ष में भी, और सुख और दुख में भी है नहीं है कि रमत है, रमत तो उतनी सी ही है, इससे ज्यादा नहीं है, अस्ति नास्ति से ज्यादा कोई बात है ही नहीं। दृष्टांत में वो बात लिया है कि बाजार में किसी ने पूछा कि आपके पुत्र है, तो कहे उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र है, बाजार में साथ में नहीं होने पर भी क्या बोला कि मेरे पुत्र, मुझे पुत्र तो है, वो अभाव नहीं कहता है, वो पैसा में क्या है, कोई पैसा जेब में लेकर फिरता है क्या, आपके पास 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपये हैं, क्या आप जेब में लेकर फिरते हो क्या, या तो बैंक में रखोगे, या तो मकान मिल्कत में रखोगे, या तो सोना जेवर में ज्वेलरी में रखोगे, या जमीन जायदाद कुछ भी, या माल व्यापार हो तो माल में रहेगी रकम, या उगाही में रहेगी, उगाही में ने किसके, किस दूसरे के घर में, आपको माल दिया 10 लाख का, और 10 लाख आप देंगे कुछ दिनों के बाद देंगे, फिर भी मैं ये मानूंगा कि मेरे रुपये हैं, मेरे पोजेशन पर है नहीं, आप देंगे तब लेंगे, नहीं देंगे तो खत्म बात, फिर भी मानने में क्या हुआ, ऑन पेपर मेरे हैं, और क्या 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 है, पेपर पे मेरे हैं, वो बोला कि मैं नहीं दूंगा तो कल्पना में गया, और वो बोला कि मैं दूंगा तो कल्पना में आया, इससे ज्यादा क्या बात है, इसका सुख और इसका दुख है। देखो कोई जेब में पैसा लेकर के तो घूमते नहीं फिरते नहीं, हाँ लेकिन मेरे पास है, क्या कहेगा, मेरे पास इतने हैं, व्यवहार में भी ऐसी रीति है, ये प्रैक्टिकल सबका अनुभव है, व्यवहार में ने ये प्रैक्टिकल साइड है अनुभव करने की, व्यवहार में भी ऐसी रीति है कि जो छता है उसको अणछता नहीं करता, मैंने जो है उसको है भला बताता है उसको नहीं है कैसे बताएगा। परंतु हे चिदानंद तेरा तो आश्चर्य आता है कि दर्शन ज्ञान शक्ति प्रकट होने पर भी, तेरा ज्ञान दर्शन तुझे प्रकट होने पर भी उसे तू अणछती कर रखा है। खोजता है मेरा स्वरूप कहाँ है, मेरा स्वरूप कहाँ है, मेरे स्वरूप को मैं खोजता हूँ, मेरे स्वरूप को मैं खोजता हूँ। अरे देख प्रकट परिणमन में आ सकती है तेरी वर्तमान पर्याय में, प्रकट परिणमन में तेरी शक्ति मौजूद है, क्यों नहीं देखता है और क्यों खोजता है? छिपी हुई हो तो खोजने की जरूरत पड़े, ये तो प्रकट है। वो भूल गया कि मैंने मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, उनको एक कल्पना हो गई कि मैंने कहीं इधर उधर रख दिया है, कहीं खो जाएगा मेरा सोना, कोई ले जाएगा, खो जाएगा या कोई ले जाएगा, ढूंढने लगा कि उसको सुरक्षित स्थान में मैं रख दूं। ढूंढने लगा तो घबराहट थी, किधर गया, क्योंकि मुट्ठी में था इसलिए कहीं मिल नहीं रहा था तो घबराहट में था, कल्पना से घबराहट हुई ना, उसमें ख्याल किया करे ये तो मेरे मुट्ठी में है, तो सावधानी आ गई, मुट्ठी मजबूत हो गई। क्या हुआ? भाव में सावधानी आ गई तो मुट्ठी मजबूत हो गई। ऐसे स्वरूप तो अपन खुद ही है, ज्ञान दर्शन स्वरूप तो खुद ही है, पता चले कि खुद ही है तो सावधानी आ जाएगी, अरे मैं हूं। बात तो उतनी सी है, आराधना की बात स्वरूप सावधानी जितनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो कहते हैं यहां पर, हे चिदानंद तेरा तो आश्चर्य आता है कि तेरी ज्ञान दर्शन शक्ति प्रकट होने पर भी तूने ऐ प्रकट कर रखी है, अभी तक अनादि काल से वर्तमान तक ऐ प्रकट कर रखी है, प्रकट होने पर भी ऐ प्रकट कर रखी है, और आज इस बात को सुन करके तुम खोज करने को निकला, और खोज में बेचैन भी हो रहा है मिलता नहीं है लेकिन मुट्ठी में है, कहाँ है? अपना सोना मुट्ठी में है, कहीं दूर नहीं है। चतुरांगुल है दृग से मिल है, चार उंगल द्रग मैंने दृष्टि, दृष्टि से दूर कोई चीज हो तो नहीं दिखे लेकिन इतनी नजदीक होवे, चार आंगल जितनी इतनी नजदीक होवे और नहीं दिखे, वो बात कैसे संभव है? जैसे चार उंगल ये हाथ लगाया तो आप नहीं दिखेंगे, इधर मैंने हाथ रख दिया तो आप लोग नहीं दिखेंगे क्योंकि आप दूर हैं, लेकिन ये चार अंगल के आड़े तो कोई है ही नहीं, आपके आड़े तो ये आ सकता है लेकिन इसके आड़े तो कोई आने की जगह ही नहीं है। उतना आत्मस्वरूप नजदीक है पर वो बात रही गुरु गम के। वो स्वरूप को इतना समीप होने पर भी, यानी बिल्कुल दूर नहीं होने पर भी, क्योंकि स्वयं का रूप है वो, तो कहां से दूर है, फिर भी नहीं दिखता है। वो दिखने के लिए गुरुगम चाहिए। उल्टा मुंह रख करके खड़ा है या चलता है, उसको मुंह घुमाने की बात है। पर सन्मुख हो रहा है, उसको स्व सन्मुख होने की बात है। स्वरूप तो जहां है जैसा है, वहां वैसा का वैसा ही है। वो तो अपने स्वरूप से हिलता नहीं है, खिसकता नहीं है। लेकिन वो बात गुरु गम की रही। कैसे घूमना, उल्टा है तो सुलटा होने में कैसे घूमना, वो बात गुरु गम की है। वो बात यम नियम संयम करके नहीं आती है। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग थाग लियो, वो साधन बार अनंत कियो, ये बात गुरु गम की रही। क्योंकि वो गुरुगम कब मिलती है, कि जब सदगुरु चरण सुप्रेम बसे, बस उतनी सी बात है। सदगुरु के प्रति प्रेम आया तो गुरुगम मिल जाएगी। गुरुगम मिल जाएगी तो अपना स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। अपना स्वरूप जो परोक्ष कर रखा है, वो अपनी नजर के आधे जो आवरण है वो आवरण हट जाएगा। ज्ञान निर्मल होने से आवरण हट जाता है। मोह कैसे हटे, इसके दो अवलंबन है, एक गुरु चरण और एक आत्मस्वरूप। बस इस दो में से किसी एक का अवलंबन आया कि मोह गया, जाओ, बाकी कोई इलाज नहीं है। संसार में, जगत में कोई इलाज नहीं है। उसको गुप्त करके रखी है, जिस प्रकार से इनकी भाषा में समझता नहीं, समझता नहीं। हाँ तो, हाँ वो तो है, वो तो है। आत्मा 14 गुण स्थान से पार है, इसलिए सूक्ष्म है। हमारा आत्मा है वो 14 गुण स्थान से पार है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए नजर नहीं आता। क्योंकि हमारी नजर सूक्ष्म नहीं है, हमारी नजर स्थूल है। और गुरु है वो तो स्थूल है तो हमारी स्थूल नजर में भी आते हैं। इसलिए 213 मां कहा कि हे पुराण पुरुष, तेरे से भी सरल है, तेरे से भी सरल है, क्योंकि इसको पहचाने बिना किसी ने तुमको पहचाना नहीं। अध्यात्म का ग्रंथ है अनुभव प्रकाश। बार बार गुरु की बात करेंगे। ये दीपचंद जी साहब भी बार बार गुरु की बात करते हैं। वो भी बात करते करते उनको गुरु का स्मरण आ जाता है बीच में, तो बीच में गुरु को घुसा देते हैं बात में। हाँ, श्री गुरु बारंबार कहते हैं, वो कहेंगे मेरे गुरु ने मुझे ये बात समझाई, मैं वरना समझता नहीं, अगर वो नहीं समझाते तो मैं
समझ सकता नहीं।
और एक दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार लोटन जड़ी को देख करके बिल्ली लौटने लगती है, एक वनस्पति आती है ऐसे टोप जैसा, छाता जैसा, छोटे से छाता जैसा होता है कूड़े के ढेर पे, तो बिल्ली उसको देख करके ऐसे ऐसे लौटने लगती है। उस प्रकार से मोह से संसार भ्रमण है, कुछ न कुछ पदार्थ देख करके ये जीव भी लोटन जड़ी के तरह से, लोटन बिल्ली के तरह से लौटने लगता है। वाह, ये चीज बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्ली हो गया, वो सामने जो चीज है वो लोटन जड़ी है, और आत्मा हो गया बिल्ली, ये बात हो रही है। और इसका नतीजा क्या, अनंत संसार का परिभ्रमण, ये इसका नतीजा है। उस प्रकार से जीव को मोह होता है, कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होने के बावजूद भी वो अच्छा बुरा की कल्पना करके संसार परिभ्रमण करता है। वहां से यथार्थ प्रकार से यानी सम्यक प्रकार से, तो यथार्थ का अर्थ ही सम्यक है, स्वरूप में आ जाए तो तीन लोक का राज्य को प्राप्त करे। बाहर के पदार्थ को का मोह छोड़ दें, तीन लोक का राज करे, तीन लोक का नाथ बन जाए, और यह तो दुर्लभ नहीं है, ऐसा तीन लोक का राज मिलना दुर्लभ नहीं है ऐसा कहते हैं। कैसी विचित्रता है कि छोटे छोटे चीज वस्तु के लिए, छोटी मोटी चीज वस्तु के लिए जीव दीन हो जाता है अपेक्षा बुद्धि में, दीन होता है कि नहीं होता है, और अपना निरालंब निरपक्ष निरपेक्ष स्वरूप को देख करके अपेक्षा को छोड़ दे तो तीन लोक का नाथ बन जाए। ऐसी परिस्थिति साफ साफ है। अब देखो क्या करना है, भिखमंगा रहना है या तीन लोक का नाथ बनना है, देखो। कितनी पराधीनता है, सुबह से शाम तक देख लो कितनी पराधीनता है, खाना खाने बिना नहीं चले, पानी पिए बिना नहीं चले, हवा लिए बिना नहीं चले, इसके लिए पैसा कमाए बिना नहीं चले, और के इसके लिए मजदूरी किए बिना नहीं चले, और अनुकूलता के लिए परिवार बिना नहीं चले, परिवार को रखने के लिए उसको निभाव किए बिना नहीं चले, कितनी कितनी प्रकार की उपाधि और आकुलता है उसमें, कितनी कितनी उपाधि और आकुलता है। वो भी इनकी सहन सहन करने की अनंत शक्ति है ना, इसलिए उसकी सहन शक्ति भी बहुत है तो नहीं लगती है। दुख सहन करने की शक्ति भी बहुत है इसलिए दुख नहीं है, ऐसी बात थोड़ी ना है। और दुख दुख कौन चाहता है वो बताओ, किसी को पूछे कि आपको ज्यादा दुख नहीं होना, लेकिन थोड़ा दुख होवे तो मंजूर करता है कोई? कोई नहीं मंजूर करता। और ज्यादा समय के लिए दुख नहीं देंगे, थोड़ा समय के लिए देवे तो, कि एक इंजेक्शन की सुई लगे उतना समय भी हमको दुख नहीं चाहिए, थोड़ा भी नहीं, थोड़े समय के लिए भी नहीं। इस नास्ते में से अस्थि निकलता है कि मुझे सुख चाहिए और पूरा समय के लिए हमेशा के लिए सुख चाहिए, उसके नाम पूर्णता है। वो चाहना का विषय जो है वो पूर्णता है। इस तरह से पूर्णता का लक्ष्य दुख का अभाव में से आता है। ऐसे तो मोक्ष का पता नहीं चलेगा, मोक्ष का भाव भाषण नहीं होगा, लेकिन इस तरह से नास्ति में अस्थि गर्भित है। यह तो दुर्लभ नहीं, ऐसा त्रिलोक का राज में मोक्ष पद दुर्लभ नहीं है। और जो वेद ज्ञान की कला है, गुरुदेव कहते थे कि जो वेद ज्ञान की कला है वही मोक्ष की कला है। वह ज्ञान कला जिसको आती है उसको मोक्ष सुलभ दिखता है, उसको मोक्ष दुर्लभ नहीं दिखता है। इसलिए लिखते हैं कि वो दुर्लभ नहीं है। जिस प्रकार पुरुष पशु का स्वांग धारण करता है, और दृष्टांत देते हैं कि कोई आदमी पशु का धारण करता है तो क्या पशु हो जाता है? मोरा पहन लिया, मोरा पहनते हैं कि नहीं पहनते? बकरे का, गाय का, भैंसा का, सिंह का, हो गया क्या पशु? नहीं हुआ। परंतु पुरुष ही रहता है, मनुष्य ही रहता है। उसी प्रकार आत्मा 84 का स्वांग धारण करता है तो भी चिदानंद ही ये स्वांग धारण किया है। मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये सब स्वांग धारण, वास्तव में मैं चिदानंद आत्मा हूं, वास्तव में मैं एक चिदानंद आत्मा हूं, मैं कोई मनुष्य फनुष्य नहीं हूं। मनुष्य माना तो मानव धर्म का लफड़ा चालू हो जाएगा, गृहस्थ माना तो गृहस्थी का धर्म का लफड़ा चालू हो जाएगा, ये लफड़े चालू हो जाएंगे सब। आपका ये ड्यूटी है, आपका ये धर्म है, आपको ये सेवा करनी होगी, आपको वो करना होगा, वो कर। मनुष्य है तो मानव धर्म से समाज सेवा करो, पहले समाज सेवा करो, बाद में धर्मस्थान में जाकर के धर्म करो, धर्म के थानक में जाकर के बाद में धर्म करो, पहले मानव धर्म करो, आजकल वो चलता है। अरे तुम पहले आत्मा हो या पहले मनुष्य हो, ये तुम बताओ, पहले कौन हो आप? जो पहले हो तो पहला वो करो ना, ये तो स्वांग है। ये संसार का ड्रामा है, रंगमंच है संसार का, उस पर तुम वेश धारण करके आ गया, भिखारी बन के आया तो मान लिया भिखारी, अंदर की संपत्ति देखता नहीं है। ऐसा ऐसी बड़ी भूल हो गई है, अनादि से वो भूल चली आ रही है। उस पर एक ज्ञान दर्पण का पद लिखा है, ज्ञान दर्पण है वो भी दीपचंद जी का बनाया हुआ है, रचना दीपचंद जी की है। वो कवि भी थे, बहुत अच्छे कवि थे, तो उन्होंने कुछ ग्रंथ तो काव्य में लिखा है, कुछ ग्रंथ तो पद्य में लिखा है, और कुछ ग्रंथ गद्य में लिखा है। उनके ग्रंथ की दोनों में रचना है, इसमें ज्ञान दर्पण है वो पद की रचना है, वो पद सारा ग्रंथ ही पद्य में लिखा हुआ है, उसमें 40 नंबर का पद है, सैकड़ों पद लिखे हैं ऐसे है? हाँ, वो आजकल प्रसिद्ध हो गया है, उसका प्रकाशन अजमेर मंडल वालों ने किया है, अर्थशास्त्र में, वो अपने भावनगर मंगाया है। कितनी कापी मंगाया? 50 कॉपी मंगाया, अपने भावनगर आ जाएगा, फिर स्वाध्याय में लेंगे कभी, स्वाध्याय में कभी। बहुत अध्यात्म की बात करते हो, तो दीपचंद जी का बात है, सब अध्यात्म का और सिद्धांत का रहा, बहुत अच्छी बातें किया। देखो एक पद देखें यहाँ, जैसे नर को वेश पशु के अनेक धरे, पशु नहीं होए रहे यथावत नर है, तैसे जीव चार गति स्वांग धरे, चिरही को तजे नहीं एक निज चेतना को भर है, ऐसी प्रतीति किए पाइए परम पद, होई चिदानंद शिव रमणी को वर है, शाश्वतो सुस्थिर जहाँ सुख को विलास करे, जामे प्रतिभासे जेते भाव चराचर है। क्या कहते हैं कि जैसे कोई पुरुष नर मैंने मनुष्य पशु का वेश अनेक प्रकार का धारण करे, कभी सिंह का और कभी भैंसा का, परंतु पशु नहीं होता है, यथावत रहता है, मनुष्य ही रहता है, तैसे जीव चार गति का स्वांग धारण करता है, कभी मनुष्य, कभी तिरियन, कभी देव, चीर ही को तजे नहीं। चीर का दो अर्थ होता है, एक वस्त्र भी होता है और एक होता है वस्त्र ही होता है। चिरही को तजे नहीं एक निज चेतना को भर है, अपने चेतना से भरा हुआ है, चार गति को स्वांग धरता है। चीर मैंने लंबे काल से भी होता है, लंबे काल से जो अपना स्वरूप है उसको त्याग नहीं करता है और अपनी चेतना से भरा हुआ है। अपना स्वरूप तो अनादि से है, चिरकाल से है, उसका तो त्याग नहीं होता और अपने चैतन्य से वो भरा हुआ है। ऐसी प्रतीति किए पाइए परम पद, ऐसा विश्वास करने से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। होई चिदानंद शिव रमणी को वर है, और चिदानंद होकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा। शिव रमणी मैंने कल्याण रूपी स्त्री का धनी हो जाएगा, वर मैंने धनी हो जाएगा, वो मोक्ष पद का धनी हो जाएगा। शाश्वतो सुस्थिर जहां, शाश्वतो मैंने शाश्वत, सुस्थिर है, जहां वो शाश्वत स्थिर है, सुस्थिर है, सुख को विलास करे, अपना सुख में मौज करेगा, वहां अपने सुख में मौज, शाश्वत स्वरूप में अपने सुख में मौज करेगा, जहां में प्रतिभासे जेते भाव चराचर है, ऐसे आत्मस्वरूप में चराचर मैंने स्थिर और अस्थिर विश्व के सभी भाव प्रतिभाषित हो जाते हैं केवल ज्ञान में। अपना स्वरूप जो केवल ज्ञान स्वरूप है उसमें सारा विश्व जलकता है, चराचर सब पदार्थ उसमें जलकता है। ज्ञान दर्पण के बहुत से पद इस ग्रंथ में उद्धरण किए हैं। देखो सोपन पाने में भी 127 नंबर का पद है और 55 पाने में 124 नंबर का है, बहुत से पद लिए हैं। फिर 153-54 नंबर का है, बेदोहा है, बहुत से पद उद्धरण किए हैं, सब अध्यात्मक हैं। बनारसी दास जी कह देते हैं इस तरह से ये भ्रांति को छुड़ाई है, मैं आत्मा सिदानंद स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव रहना वो निर्भ्रांत दिशा है, क्योंकि ऐसा अपना स्वरूप है। प्रकट लक्षण से ऐसा अनुभव करे, प्रकट अनुभव होएगा उसको प्रकट दशा कहते हैं, वो निर्भ्रांत दशा है। वो निर्भ्रांत दशा को प्रकट नहीं करके वर्तमान कर्मजनित अवस्था जो भेष रूप है उसको ही अपना स्वरूप मानेगा तो भ्रांति में पड़ करके दुखी दुखी हो जाएगा। उतना सारांश, उतना तात्पर्य यहाँ से निकलता है, यहाँ तक।